Namo Buddhaya. Jai Bhim. So we're exploring this imaginative landscape.
तो यह जो काल्पनिक पृष्ठभाग है उसको हम उजागर कर रहे थे.
This imaginative landscape that millions and millions of Buddhists have visited over the last 2,500 years.
ऐसा पृष्ठभाग जिस पर हजारों सालों से यानी महान लोगों ने भेंट दी है.
Even when Buddhism had completely died out, even when most people had forgotten about the Mahabodhi temple, still pilgrims came from Bangladesh, Burma.
भले भारत से बौद्ध धर्म पूरी तरह नष्ट हो गया था, दृष्टिगोचर हो गया था, उसके बावजूद भी बर्मा से लोग यहाँ आते रहे.
And the Burmese king again and again tried to repair the center.
और जो बर्मा के जो राजा थे वह बार बार इस यानी मंदिर को बनाने की कोशिश कर रहे थे.
So they were drawn, even though it was in ruins. They were drawn to it, even though it was in ruins.
भले ही वो अवशेष थे, लेकिन उन अवशेषों के पास वो खींचे चले आते थे.
And of course, the journey to Bodh Gaya at that time would have been very, very difficult.
और निश्चित ही उस वक्त बोध गया की जो यात्रा है वह काफी कठिन होगी.
They'd have had so many hardships just to get here.
काफी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता होगा यहाँ पहुँचने के लिए.
There are many records of, for instance, Chinese pilgrims who would take 2 years to get here.
ऐसे कई संदर्भ हमें मिलते हैं चीन से आने वाले यात्रियों को दो दो साल यहाँ पहुँचने के लिए लगते थे.
And many of them would die on the way.
और बहुत सारे लोग रास्ते पे ही मर जाते थे.
So just the difficulties that we have are nothing.
तो उनकी तुलना में हमारी जो तकलीफ है वह कुछ नहीं है.
It's so easy for us to get here, so easy for us to be here.
यह बहुत आसान है हमारा यहाँ होना.
So we can put in a little extra effort while we're here.
तो जब हम यहाँ है थोड़ा सा हम जुगत या थोड़ी ताकत लगा सकते हैं.
So of course we've seen the Bodhi tree.
निश्चित ही हमने बोधि वृक्ष को देखा.
And yesterday we were reflecting on what happened there.
और कल हमने देखा कि वहाँ क्या हुआ.
And we saw the Buddha's victory over Mara.
और हमने देखी बुद्ध की जीत मार के ऊपर.
We saw the Buddha's recognition of the house builder.
और वो गृहकार की जो पहचान है वह हमने बुद्ध के द्वारा देखी.
As a result of seeing the house builder, the house is destroyed.
चूंकि उन्होंने गृहकार को देखा उस गृह को वो तोड़ पाए.
And the conditioned mind is left completely behind.
और जो संस्कारी चित्त है उस चित्त को पूरी तरह उन्होंने नष्ट किया था, त्याग दिया था.
The conditioned mind is the mind that is bound up with the five elements.
जो संस्कारी चित्त है यह पांच तत्वों से बंधा हुआ है या हाँ उसमें बंदिश्त है.
And the Buddha has completely left that behind under the Bodhi tree.
और बुद्ध ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया या छोड़ दिया बोधि वृक्ष के तले.
His mind is unconditioned.
क्योंकि उनका मन जो है वह असंस्कारित हो गया था.
So the tradition is that he sat for one whole week without moving under the tree.
तो परंपरा हमें यह बताती है कि उस पेड़ के नीचे वो एक सप्ताह बिना यानी हिले डुले या कहीं न जाते हुए एक स्थिर रहे.
And we have difficulty with just 4 sessions in the morning.
और हमें कठिनाइयां चार सत्रों से जो सुबह हम करते हैं.
With a nice break in between and breakfast.
जहां हमें नाश्ता मिलता है और ब्रेक भी मिलता है.
I'm joking, but it does put things in proportion, doesn't it? Yeah.
मैं विनोद कर रहा हूँ लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि यानी कितनी मेहनत की होगी.
And we're told he sat there for one whole week enjoying the bliss of freedom.
और वे वहां एक सप्ताह तक स्थिर बैठे रहे और जो मुक्ति का जो आनंद है उस आनंद को वो ले रहे थे.
All his troubles have gone.
उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो गई.
His quest is over.
उनकी खोज जो थी वह पूरी हो चुकी थी.
In his own words, done is what had to be done.
उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो वह किया जा चुका था जो करना बाकी था.
And he experiences a tremendous peace and joy.
और जो अनुभव था वह एक विशाल शांति का और अप्रतिम आनंद का.
You remember in the Dhammapada he says Nibbana Paramang Sukham.
Dhammapad में हम यह सुनते हैं Nibbanang Paramang Sukham.
Nibbana is the highest happiness.
Nibbana जो है यह सर्वोच्च आनंद है.
So he was just experiencing that.
तो उसका वह अनुभव ले रहे थे.
Nothing could touch him, nothing could disturb him.
कोई भी बात उन्हें छू नहीं सकती थी या विचलित नहीं कर पाती थी.
And then as we heard on the first night, he moved a little bit to the northeast.
हमने सुना है कि फिर उस रात के पश्चात वो थोड़े पूर्वी उत्तर दिशा से बढ़े.
And he just stood.
और वे वहां खड़े थे.
And he stood gazing at the Bodhi tree.
और वो बोधि वृक्ष को देखते हुए या ताकते रहे.
Gazing in gratitude.
कृतज्ञता से ताकते रहे.
And after that he began to walk up and down.
उसके पश्चात वह यानी क्या है आगे पीछे से चलते रहे.
You can get the landscape quite easily.
अब यह जो पृष्ठभाग है उसे आप आसानी से समझ सकते हैं.
You know, there's the tree.
अब वहां पे पेड़ है.
Just round the corner, there's that raised plinth.
और वो पेड़ के बाजू में ही अगर आप देखते हो तो एक चबूतरे जैसा लंबा रास्ता बना है.
It's called the Ratna Chankraman.
उसे रत्न चंक्रमण कहते हैं.
It's called Ratna Chankraman.
पाली.
Yeah.
उसे रत्न चंक्रमण कहते हैं.
So the Buddha would have been standing a little bit outside the parikrama, looking back at the tree at the end of that chankraman.
तो वो जो चंक्रमण जहाँ समाप्त होता है उससे थोड़ा अगर आप आगे जाते हो तो उस परिमंडल के बाहर जाकर वो पेड़ को ताक रहे थे.
And of course we can't understand his state of mind at this point.
और उस वक्त हम उनकी जो मनस्थिति है उस मनस्थिति को हम समझ नहीं पाते.
We use our own words for it, like gratitude.
अब हमारे शब्दों का हम प्रयोजन करते हैं जैसे कृतज्ञता.
But of course it's gratitude on another level, on another scale.
लेकिन यह कृतज्ञता बहुत ही अलग स्तर पर थी.
So from that deep appreciation of everything that supported him, he just begins to walk up and down.
तो उस कृतज्ञता से जो जिसकी वह प्रशंसा कर रहे थे उसी भाव से वह आगे पीछे ऐसा वह चंकमन कर रहे थे.
Now later tradition says that each step that he took brought forth a lotus.
और परंपरा हमें ऐसा बताती है कि हर कदम जो उन्होंने उठाया उस पे कमल दल खिले.
And those lotuses sort of rose into the air.
और वो जो कमल दल है वह ऊपर हवा में उड़ गए.
So he was stepping on a row of lotuses.
तो उन कमल दल के ऊपर फिर उन्होंने जहां जहां वो कदम रखते थे वहां कमल दल आ जाता था ऐसा.
Presumably we're not talking about historical fact here.
यहां अब हमें ऐतिहासिक संदर्भों की मैं बात नहीं कर रहा हूं.
We're talking about poetic truth.
यहाँ पे जो काव्यात्मक सत्य है उस सत्य की मैं बात कर रहा हूँ.
You can just reflect what that means.
और आप इस पर चिंतन कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है.
It means that the Buddha's walking is no ordinary walking.
इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्ध का जो चलना था वह सामान्य नहीं था.
All our Buddhas and Bodhisattvas that we visualize sit on lotuses.
जो भी बुद्ध या बोधिसत्व का संदर्शन हम करते हैं वह कमल पुष्प पर बैठते हैं.
And that communicates to us that it's on another level.
और यह हमें संवादित करता है कि यह एक दूसरा स्तर है.
The fully opened lotus of the awakened mind.
जो पूर्ण कमल दल या कमल पुष्प जो फूला हुआ है जो संबोधि का मन है.
So that certainly comes to mind when we think of these lotuses springing up.
तो यही मेरे मन में आता है जब कभी भी यानी कमल दल खिलते हुए मैं देखता.
Perhaps it suggests something else.
शायद ये और भी कोई बात बता रहा है.
The Buddha still had a body.
बुद्ध को फिर भी शरीर था.
He was still walking.
उसके बावजूद भी वो चल रहे थे.
Later we see him talking.
उसके बाद में हम देखते हैं कि वो बातें कर रहे थे.
He's still a human being.
वे फिर भी इंसान थे.
But he's become unconditioned.
लेकिन वे असंस्कारित पुरुष थे.
He's no longer identified with his body.
अपने शरीर के साथ उन्होंने अपनी पहचान नहीं की.
He is no longer identified with his human existence.
एक मनुष्य के अस्तित्व के साथ उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई.
He is in the world, but it's as if he's not touched by the world.
वे संसार में थे लेकिन वे संसार से प्रभावित नहीं थे.
We have an expression in English, in the world but not of it.
अंग्रेजी में ऐसी कहावत है कि संसार में होना लेकिन संसार का न होना.
वाह, शाबाश. I like to test him. So, yes, the Buddha was in this world, but he wasn't really part of this world.
तो वे इस दुनिया में थे, लेकिन वे इस दुनिया का हिस्सा नहीं थे.
And that's what these lotuses symbolize.
तो यही अर्थ है इन कमल का.
So later these lotuses were represented.
Later these lotuses were represented.
They made images of them.
उसके पश्चात उन कमल दलों का वह यानी क्या है कि प्रतिमा बनाएगी उन्हें बनाया गया.
And we still have one of the columns of one of the lotuses which is in the museum here.
तो उस कमल दल का एक जो कॉलम यानी जो क्या कह सकते एक हिस्सा जो है वह पुरातत्व जो म्यूजियम है वहां रखा हुआ है.
So there would have been a plinth with small columns and then a lotus on top.
तो वहां पे ऐसा है स्लैब का सीमेंट का
स्टोन
पत्थर का प्लिंथ है और उसके ऊपर कमल है.
We know this because there's a representation of it on both the stupa at Sanchi and at Barhut.
हम जानते हैं क्योंकि इसके अवशेष हमें जो बाहुत का जो स्तूप है और सांची का स्तूप है इन दोनों स्तूपों में मिलते हैं.
So what you see now is a sort of modern reconstruction of what would have been there in ancient times, more or less.
अभी जो हम देखते हैं वह कमल की जो कतार जो है वो जो प्राचीन काल में जो था वो उसी का इमेज है या उसका कॉपी है कह सकते हैं.
In Ashokan times, a small pavilion was raised over that.
और अशोक के वक्त में उसके ऊपर एक छत बनाई गई थी.
So you know that you've got that, you've got the Mahabodhi temple, then you've got that plinth.
तो अभी आप देखते हैं कि वहां पे यानी विहार है और उसके बाजू में वो रास्ता है जहां पे कमल दल खिले हुए.
And then to the left of that, as you're going round, there's a row of bases, column bases, just in the pavement.
No, I didn't get that.
To the left of the plinth, there's a row of the bases of columns in the pavement.
तो वो जो रास्ता है उस रास्ते में आप देखोगे कि उसके बाजू में जो कॉलम वहां रहे होंगे यानी जो कॉलम समझते आप लोग स्तंभ जो रहे होंगे उनकी उनके बुनियाद के ढांचे दिखते हैं.
When you go tonight, you'll see them there, just a row of them, just low like that.
तो आप अगर आज जाओगे तो वहां दिखेंगे इतने इतने आकार के वो है.
But those are from the Ashokan period.
और वो जो अवशेष है वो अशोक कालीन है.
And there would have been a column on top of each of those.
और उनके ऊपर ऐसे स्तंभ थे इतने इतने बड़े.
And then there would have been a row of columns on the other side, which are now under the Mahabodhi temple.
और दूसरी ओर भी ऐसे ही स्तंभ है जो अभी महाबोधि मंदिर के अंदर है.
So there would have been a sort of open veranda, a mandap.
तो वहां जब वो मंदिर नहीं होगा तब ऐसा खुला मंडप रहा होगा.
The temple wasn't there. There was only a small temple further inside, so to speak.
तो उस वक्त इतना बड़ा मंदिर वहां नहीं था, छोटा मंदिर था.
So you can get the image. There's a sort of peaked roof with columns and inside a plinth.
तो अभी आपको कल्पना ही होगी जो बीच में जो रास्ता है वो रास्ता दिखता है और दोनों साइड में स्तंभ थे और उसके ऊपर ऐसी छत थी.
So when you go tonight, you can look at that and we'll bring it to life again in your imagination.
तो जब आप आज वहां जाओगे तो इसकी कल्पना आप कर सकते हो और अधिक उसमें आप जान डाल सकते हो.
So this is where the Buddha spent, according to tradition, 1 week. Just walking backwards and forwards.
तो परंपरा हमें यह बताती है कि एक सप्ताह बुद्ध ने वहां बिताया ऐसा चंकमन करते हुए आगे पीछे.
I don't know whether it was exactly 1 week, but anyway, it was presumably a long time.
अब एक सप्ताह उन्होंने वैसा किया या नहीं किया ये पता नहीं, लेकिन काफी देर तक उन्होंने वहां संक्रमण किया होगा.
So what was he doing?
तो वे क्या कर रहे थे?
Well, walking up and down is a very reflective activity.
ऐसा चलना आगे पीछे यह काफी चिंतनात्मक चलन है.
I used to notice Bhante walking up and down a lot at Padmaloka.
मुझे याद आता है भंते पद्मलोक में आगे पीछे ऐसे चलते रहते थे.
There was a particular path. He just walked backwards and forwards for hours sometimes.
और वहाँ पे एक विशिष्ट ऐसा रास्ता है. घंटों तक भंते वहाँ आगे पीछे ऐसे चलते रहते थे.
And sometimes I could see him out the window of my room.
और कभी कभी मेरे रूम के बाहर जो खिड़की थी उस खिड़की से मैं देख पाता था.
And just walking up and down with his hands behind his back.
तो आगे पीछे वो चलते रहते थे ऐसे पीछे हाथ बांधकर.
Very very calm.
बहुत ही शांत.
But very serious looking look on his face.
लेकिन बहुत गंभीर रुख उनका चेहरे का रहता था.
And you could almost see that he was reflecting to himself on something.
और आप इस बात को स्पष्ट बता पाते हो कि किसी तो भी बात के ऊपर वे चिंतन करते रहते थे.
In fact, sometimes if you'd go anywhere near him, you'd find he was humming a little bit.
और अगर आप उनके करीब अगर जाओगे उस वक्त तो हमिंग का मतलब वो अपने आप से कुछ गुनगुनाते रहते थे. ऐसे गुनगुनाते थे.
There didn't seem to be a tune, but he was just humming quietly to himself.
तो ऐसी कोई धुन नहीं थी लेकिन कुछ ना कुछ वो अपने आप में ऐसे गुनगुनाते रहते थे.
And often he'd say later he'd been thinking about something and he'd come to certain conclusions.
और बाद में वो बताते थे कि वो किसी बात के बारे में सोचते थे और मैंने ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचा ऐसे वे बताते थे.
And I must have taken this practice myself.
और मैंने खुद वो आचरण अपनाया है.
It's not a practice exactly, it's something you do.
अब यह आचरण भी नहीं है यह कोई तो भी बात है जो आप करते हैं.
There's something you're working on.
कोई तो भी बात के ऊपर आप काम करते हो अपने भीतर जो हो रहा है.
Something you're turning over in your mind.
आपके मन में कोई तो भी बात बाहर आना चाहती है.
It's not just thinking, it's reflecting deeply.
यह केवल सोच नहीं है या विचार करना नहीं है गहरा चिंतन का वह कार्य या कृति है.
It's as if your whole inner experience is turning over.
ऐसा कह सकते हैं कि आपके सारे जो अंतरंग है या आंतरिक जो अनुभव है वह बाहर आने की कोशिश करते हैं.
And the movement backwards and forwards, the gentle movement backwards and forwards seems to help that sort of reflection.
तो इस प्रकार का जो गहरा चिंतन होता है उसमें ऐसा जो चलना होता है आगे पीछे शांति से वह मदद करता है.
So, what was the Buddha reflecting on?
तो किसके ऊपर बुद्ध चिंतन कर रहे थे?
मुझे मालूम नहीं. How can we know?
कैसे हम बता सकते हैं कि किसका चिंतन बुद्ध कर रहे थे?
But let's just imagine a little bit.
तो आइए अब थोड़ी सी कल्पना करते हैं.
He's been under the tree for a week.
अब एक सप्ताह तक वे बोधि वृक्ष के तले थे.
He's resolved the problem that brought him there.
जो कुछ भी समस्या है वह उत्पन्न हुई उनका सुझाव उन्होंने ढूंढा था.
He's escaped Mara's clutches.
मार के जो यानी बंधन थे उन बंधनों से वो मुक्त थे.
He's seen the house builder.
उन्होंने गृहकार को देख लिया था.
He says he's been seeking the house builder lifetime after lifetime.
वो बताते थे कि गृहकार को वो हर जन्म में जन्म जन्मांतर से वह देख रहे थे.
He's seen that house builder and no longer will the house be built.
और उन्होंने उस गृहकार को देख लिया था और फिर वह गृह वो कभी नहीं बनाएंगे.
So the impression you get is at this stage the experience is almost entirely transcendental, you might say.
अब आप ऐसा कह सकते हैं कि इस वक्त जो अनुभव है वह लोकोत्तरीय अनुभव है.
इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग द अनकंडीशन्ड माइंड.
ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसे असंस्कारित चित्त का अनुभव.
लेटिंग गो ऑफ द कंडीशन्ड माइंड.
जो संस्कारित मन है उसे छोड़ना उसे त्याग देना.
वेरी वेरी इंटेंस डीप स्टेट ऑफ समाधि.
यह काफी गहरी और गंभीर समाधि की अवस्था है.
That's what one imagines he experienced at this point.
ऐसा ही हम इस बिंदु के ऊपर यानी चिंतन कर सकते हैं.
Maybe not so many words in his mind.
शायद उनके मन में बहुत सारे शब्द ना हो.
At this point all he wants to do is just deeply soak himself in the experience of liberation.
इस वक्त वो केवल उस मुक्ति के पूर्ण अनुभव में अपने आप को डुबा लेना चाहते थे.
But then in a very gentle way, a sort of thought begins to arise, or a feeling begins to arise.
और फिर बहुत ही सहजता से ऐसे कुछ भाव ऊपर आ रहे थे.
It may be he walks a little way just to ease himself, turns around and he sees the tree.
हो सकता है अपने आप को सहज करने के लिए वो चलते हो और वापस उन्होंने उस पेड़ को देखा हो, बोधि वृक्ष को देखा हो.
And when he sees the tree, it brings out all his feelings of gratitude.
और जैसे ही वो पेड़ को देखते थे, उनकी सारी जो कृतज्ञता के जो भाव थे, वह भाव आगे आते थे.
And he just stops.
और फिर वो रुकते थे.
It just stops and looks.
वो रुकते थे और देखते थे.
If any of you have been on solitary retreat, you'll remember these points where you just stand.
कभी कभी आप जब एकांतवास के शिविर में हो तो आप अनुभव करते हो, आप ऐसे रुकते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं.
You've got nowhere to go, nothing to do.
कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है.
And a sort of feeling arises within you, and you just stand absorbed in that feeling.
तो ऐसे आपके भाव उभर के आते हैं और फिर आप उस भाव में स्तब्ध हो जाते हैं.
So maybe something like that the Buddha was experiencing at that point.
तो शायद ऐसा ही कुछ उस बिंदु पे बुद्ध अनुभव कर रहे हो.
But then it's as if some thinking begins to awaken.
फिर उसके बाद ऐसी कुछ सोच जागृत हुई.
You can imagine seeing the tree, it arouses in him a sort of sense of the conditions that have created or brought him to that point.
तो उस पेड़ को देखते ही जो परिस्थितियों ने उनको वहां तक पहुंचाया, वो उन परिस्थितियों का शायद याद या चिंतन उनके मन में आता हो.
And he begins to explore conditions.
और जो संस्कार है, conditions,
yeah.
जो संस्कार है, उन संस्कारों को फिर उन्होंने यानी उजागर किया होगा, उसको खुला किया होगा.
He begins to realize that everything is conditioned.
फिर उन्होंने समझा कि हर चीज जो है वह संस्कारित है, परिस्थिति सापेक्ष है.
He's seeing the world with sparkling clarity.
क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक यानी क्या कह सकते हैं, ऐसे असाधारण स्पष्टता से देखा.
And he has no attachments within the world.
और दुनिया में ऐसी कोई भी आसक्ति उनके लिए नहीं थी.
So he just sees it as it is, without any effort.
तो बिना किसी प्रयास के वह जैसी है वैसी वो देख पाते थे.
And he sees that it's conditioned.
और उन्होंने देखा कि यह संस्कारित है.
He sees that whatever you look at, it arises in dependence on conditions.
तो कोई भी चीज अगर आप देखते हैं तो वह संस्कारित यानी किसी परिस्थिति के आधार पर उत्पन्न होती है.
Whatever arises in dependence on conditions.
जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर ही उत्पन्न होता है.
So it's just walking up and down, absorbing the full implications of this realization.
तो वो इस प्रकार से आगे पीछे चल रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था उसके ऊपर, जो साक्षात्कार हुआ उसके ऊपर गहरा चिंतन वे कर रहे थे.
Maybe you can imagine that as he walks, he realizes some deeper implication.
आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे वो चलते हैं, एक गहरा साक्षात्कार उन्हें आता था.
He realizes everything is conditioned.
उन्होंने इस बात को समझा कि हर चीज ऐसी ही है.
It's quite difficult for us to realize how radical this recognition was.
अब हमें यह समझना कठिन है कि कितना क्रांतिकारी यह चिंतन है.
We're board members.
अब हम संघ सदस्य है.
We've studied the Dhamma.
हमने धम्म का अभ्यास किया है.
I hope we really fully understand conditionality, at least at the theoretical level.
कम से कम सैद्धांतिक लेवल पर हमने संस्कारिकता को समझा होगा.
We've studied the wheel of life.
हमने भवचक्र को पढ़ा है.
We've studied mind, creative and reactive.
हमने मन सृजनात्मक और प्रतीकात्मक सुना है.
We're familiar with the idea of conditionality.
तो हमें परिचित है कि संस्कारिकता क्या है.
But and also modern science is at least to some extent in tune with the spirit.
और आज का जो आधुनिक विज्ञान है वह इस चेतना के साथ अनुकूल है.
So for us it's not a very radical realization, at least at the theoretical level.
तो हमारे लिए यह बहुत ऐसा क्रांतिकारी साक्षात्कार है सैद्धांतिक स्तर पर है ऐसा हमें नहीं लग सकता.
At the Buddha's time, it was completely radical.
लेकिन बुद्ध के जमाने में अगर या उस वक्त की बात अगर हम सोचते तो निश्चित रूप से यह क्रांतिकारी था.
The more I study and look at what India was like at the time of the Buddha, the more extraordinary his achievement is.
जितना मैं पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि बुद्ध के वक्त या उस वक्त समाजकालीन या परिस्थितियां विचार जैसे थे उस वक्त का अगर हम सोचते हैं तो यह काफी क्रांतिकारी विचार था.
India at that time was full of ideas.
उस वक्त जो भारत था वह संकल्पनाओं से भरा हुआ था.
We've got a lot of the records of those and the Upanishads, the Puranas and so forth.
इस प्रकार के कई संदर्भ हमें उपनिषद और कुरानों में मिलते हैं.
So many ideas about reality.
बहुत सारे ऐसी संकल्पनाएं सत्यता के बारे में.
So many theories.
बहुत सारे सिद्धांत.
So many views, दृष्टि.
बहुत सारी दृष्टि.
And you could say that they fall into two categories.
और आप देखते हैं कि वह दो हिस्सों में बढ़ती है.
Most people thought that things happened because of supernatural forces.
बहुत सारे लोगों ने ऐसे सोचा कि चीजें इसलिए होती है क्योंकि ऐसी कोई यानी दैवी शक्ति है.
Actually, today in India, still most people think this.
वैसे देखा जाए तो आज भी भारत में बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं.
They think that what happens happens because of the gods.
वो ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर के कारण होता है.
One or other of the 33 crore of gods has made it happen.
तो 33 करोड़ में से कोई तो भी एक होगा जिसने यह किया है.
So that's 330 million gods.
In English.
So people think and they thought at that time that their lives, their happiness, their unhappiness was governed by divine forces.
तो तब लोगों ने ऐसा सोचा कि उनका जो जीवन है या उनका सुख या दुख है वह ऐसी दैविक शक्तियों से चलाया जा रहा है.
A very few people believe that it was all random.
बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा.
Without any order or meaning.
किसी बिना नियम के यह नहीं है या अनियमित है ऐसा किसी ने नहीं बहुत कम लोगों ने सोचा.
It's quite interesting at the time of the Buddha that there really were people who were nihilists.
और यह भी रोचक बात है जानना कि बुद्ध के वक्त भी लोग निराशावादी थे.
Everything happened without any meaning, without any purpose.
हर चीज जो होती है वो उसका कुछ मतलब नहीं है बस ये ऐसा ही है.
There was no larger meaning to it all.
और उनका कुछ क्या कह सकते कि चीजों में कोई तथ्य नहीं है इसका कुछ मतलब नहीं है ऐसा वो सोचते थे.
So you got these two big extremes in Indian thought at that time.
तो भारतीय दर्शन में या भारतीय विचार में ऐसे दो सिरे या टोक हमें मिलते हैं.
And it's almost incredible that the Buddha was able to find the middle way between them.
और यह बहुत ही अतुलनीय बात है कि बुद्ध ने इन दोनों जो सिरे उसमें मध्यम मार्ग उन्होंने ढूंढा.
What he taught, that is Pratitya Samuppada, was completely radical in India at that time.
तो भारत में उस परिस्थिति में प्रतित्य समुत्पाद को सिखाना या समझना बहुत ही क्रांतिकारी था.
It still is actually.
आज भी उतना ही यह क्रांतिकारी है.
Because in the Middle Ages, India lost that understanding of the Buddha.
क्योंकि मध्यकालीन भारत में यह जो समझ थी यह जो सिद्धांत है भारत भूल गया था.
So the Buddha, walking up and down, worked out why everything happens.
तो बुद्ध ऐसे आगे पीछे चल रहे थे और सोच रहे थे कि क्यों यह हो रहा है.
He saw why everything arises.
उन्होंने देखा कि क्यों हर चीज उत्पन्न होती है.
It arises because of conditions.
उन्होंने देखा कि हर चीज परिस्थिति सापेक्ष है परिस्थिति जन्य है.
When those conditions cease, it ceases to arise.
जब वो परिस्थितियां रुक जाती है तो फिर चीजें उनका उत्पन्न या उनकी उत्पत्ति रुक जाती है.
And he said in one of the earliest records we have of that time, he said something very important.
और उस यानी सबसे प्राचीन जो संदर्भ हमारे पास है उसमें कुछ रोचक बातें हैं.
In the Udana, which is a very early collection of sayings of the Buddha,
उदान जो है जो बुद्ध के बहुत पहली कथनी के जो संदर्भ है
We've been studying them in the A team.
A team में हम उसकी पढ़ाई कर रहे थे
And the first three of the Udanas are from the Buddha's enlightenment.
तो पहले तीन जो उदान है वह बुद्ध के संबोधि से है
So the Buddha says, when everything becomes clear to the deeply meditating Brahman, he sees thing with its cause. So I break it up.
जब कोई ब्राह्मण गहरे ध्यान से देखता है कि चीजों का उत्पत्ति क्या है तो वह उसके कारण को देखता है
Don't forget the Buddha was giving new meaning to the word Brahmin.
तो अब यह मत भूलिए कि यहाँ ब्राह्मण जो शब्द है उसका अलग अर्थ है
We'll see later that he considered a Brahmin was made by worth, not by birth.
हम बाद में देखेंगे कि ब्राह्मण जिससे बनता है वह उसके योग्यता से बनता है ना कि वह उसके जन्म से बनता है
So in the Buddha's understanding at that time, a Brahmin was somebody who saw the truth.
तो उस वक्त ब्राह्मण शब्द का जो इस्तेमाल बुद्ध ने किया वह इस अर्थ से किया जिसने सत्य को देखा
So when somebody meditates deeply, they see the truth.
तो जब कोई गहरा जो कोई गहरा ध्यान करता है उस ध्यान से चीजों को देखता है तब वह सत्य देखता है
He saw that you cannot separate a thing from its cause.
तो उन्होंने ऐसे कहा कि चीजों को आप उसके कारण से अलग नहीं कर सकते
यू कांट सेपरेट एनीथिंग फ्रॉम इट्स कंडीशंस
इसके परिस्थिति से आप उन चीजों को अलग नहीं कर सकते
यू कुड से इवन दैट अ थिंग एंड इट्स कंडीशंस आर द सेम थिंग
आप ऐसा कह सकते हैं कि चीजें और परिस्थितियां एक ही हैं
सो देन ही नोज व्हाई थिंग्स अराइज
तब वे जानते हैं कि क्यों चीजें उत्पन्न हो रही है
एंड देन ही सीज दैट विदाउट दोस कंडीशंस दे सीज
और फिर वो जानते हैं कि अगर वो परिस्थितियां नहीं है तो फिर वो चीजें भी उत्पन्न नहीं होगी
एंड ही सेज व्हेन यू सी लाइक दैट यू स्टैंड जस्ट लाइक द सन लाइटिंग अप द स्काई
तो अगर आप ऐसा देख पाते हैं तो आप वैसे खड़े होते जैसे आसमान में सूरज हर चीज को प्रकाशित ही करते जाता है
सो यू इमेजिन दैट दिस इज द सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन दैट्स कमिंग टू हिम एज़ ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन
तो आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार का जो चिंतन है उस चंक्रमण में ऐसा चिंतन उभर कर आ रहा था
ही इज रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाई थिंग्स आर एज दे आर
वो वाकई में समझ रहे थे क्यों चीजें ऐसी है जैसी वह दिख रही है
इफ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर एज दे आर देन यू नो हाउ यू कैन चेंज देम
तो अगर आप जानते हैं चीजें जैसी है वैसी आप देख पाते तो फिर आप उन्हें बदल सकते हैं
यू नो हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ द कंडीशन
आप जानोगे कि कैसे आप उन परिस्थितियों से बाहर आओगे
यू कैन फॉलो इन बंटे'स लैंग्वेज द स्पाइरल पाथ
भंते के शब्द में अगर कहा जाए तो हम उसे ऊर्ध्वगामी मार्ग कह सकते हैं
यू कैन डेवलप द क्रिएटिव माइंड
आप जो सृजनात्मक जो मन है उसे निर्माण कर सकते हैं
Bhante's teaching is simply an explanation, a further explanation of what the Buddha realized at that place.
तो भंते की जो शिक्षा है जो बुद्ध ने यहाँ साक्षात्कार किया उसका ही आगे जो विश्लेषण है वह बुद्ध भंते ने किया
Yes, you can develop the creative mind and thereby you can escape. From conditions.
तो आप सृजनात्मक मन को तैयार कर सकते हैं और फिर आप परिस्थिति से या उन संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं
You can experience a mind that is not conditioned.
आप उस मन का अनुभव कर सकते हैं जो संस्कारित नहीं है
Yes, conditions are there.
निश्चित ही परिस्थितियां वहाँ है
While you still have a body, you still got conditions.
जब शरीर है तो परिस्थिति है
The Buddha, if he ate a bad meal, well, eventually He was poisoned.
अगर बुरा खाना स्वयं बुद्ध ने में अगर खाया तो उनको क्या हो गया उनका पेट खराब हो गया
But he's not identified with it.
लेकिन उससे या उस शरीर से उनकी पहचान नहीं है
He's mindful of the body.
वे शरीर के बारे में स्मृतिवान हैं,
but not identified with the body.
लेकिन उस शरीर से वह अपनी पहचान नहीं बना रहे
He's through following the spiral path, he's freed himself from conditions.
तो उन्होंने वह जो ऊर्ध्वगामी मार्ग है उसके द्वारा उन्होंने अपने मन को मुक्त किया.
So this is what the Buddha realized.
तो यह बुद्ध ने यह साक्षात्कार बुद्ध को हुआ.
Whatever he gave attention to, he realized arose in dependence on conditions.
जिस किसी भी चीज को उन्होंने देखा कि यह परिस्थिति सापेक्ष है.
And of course, if it arises in dependence on conditions, it's got no substance to it.
और अगर चीजें परिस्थिति सापेक्ष है तो उसमें ऐसी कोई सब्सटेंस का मतलब कोई ऐसा पदार्थ उसमें नहीं है.
There's nothing in it that exists independently.
उस उत्पत्ति में ऐसी कोई स्वतंत्र बात नहीं है जो बदलती नहीं.
There's nothing to hold on to.
ऐसी कोई बात नहीं वहां जिसको हम ऐसा पक्का पकड़ सके.
There's nothing to chase after.
और जिसका हम यानी उसके पीछे हट कर सके, उसके पीछे लग सके और उसे हम पकड़ सके.
This is a very important realization of the Buddha's.
तो यह बहुत महत्वपूर्ण साक्षात्कार है बुद्ध का.
Because what we are doing is chasing after conditioned things all the time.
क्या हम करते हैं जो संस्कारित चीजें है उसके पीछे हम लगे हुए
हैं. When we want some status, we think it's going to give us real satisfaction.
हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे कोई पद मिला तो ये वाकई में मुझे समाधान देगा.
When we think that when we become chairman or when we become Mitra convener or whatever it is, then we're something.
अगर मैं चेयरमैन बन गया या मित्र कन्वीनर बन गया तो फिर मैं कोई तो भी बन गया, ऐसा हम सोचते हैं.
एक्चुअली इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी.
वैसे देखा जाए तो यह केवल जिम्मेदारी है.
इट हैज नो इंडिपेंडेंट रियलिटी.
इसकी कोई स्वतंत्र सत्यता नहीं है.
But we, in our minds, think of it as something we can have.
लेकिन हम हमारे मन में ऐसा सोचते कि ऐसी कोई चीज है इसे मैं पा सकता हूँ.
Sometimes people seem to think of ordination like that.
कभी कभी लोग दीक्षा के बारे में ऐसा सोचते हैं.
You know, in the ordination process, this is one of the things we have to work with.
अब जो दीक्षा की प्रक्रिया है, इस बात से हमें इसका सामना करना होता है.
People think that ordination is a status.
लोग ऐसा सोचते हैं कि दीक्षा एक प्रतिष्ठा है.
That you've got something when you're ordained.
आपको ऐसे लगता है कि मेरी दीक्षा हो गई तो मैं अभी कुछ बन गया.
But you don't get anything.
अब आपको कुछ मिलता नहीं है.
You commit yourself.
आप केवल कटिबद्ध होते हैं.
But we think of it as something we can have.
लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसी कोई बात है जो मुझे हासिल हुई है, मिल गई है.
So our lives are full of things we think we can have, which will give us satisfaction.
तो हमारा जीवन ऐसे चीजों से भरा है, हमें ऐसे लगता है कि अगर यह चीजें मुझे मिल गई तो मुझे संतुष्टि मिलेगी.
We live in the midst of conditions.
हम संस्कारितता के बीचों बीच जीते हैं.
We take conditions for reality.
हम संस्कारितता को या उन परिस्थितियों को सत्य समझ बैठते हैं.
We think this is reality.
हम सोचते यही सत्यता है.
This all around us right now, we think is reality.
अब जो इर्द गिर्द हमारे दिख रहा है हम इसे सत्य मान बैठे हैं.
वी थिंक इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली.
हम ऐसा सोचते हैं कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व है.
वी थिंक वी कैन अचीव समथिंग विद इन इट.
हम ऐसा सोचते हैं कि इसके बीच में हम कुछ हासिल या प्राप्त कर सकते हैं.
वी गो चेसिंग आफ्टर इट.
और फिर उसके पीछे हम दौड़ते हैं, भागते हैं.
वेल ऑफ कोर्स इट डज अपीयर.
निश्चित ही यह क्या कैसे प्रतीत होती है, दिखती है.
There's an appearance of subhuti.
यहाँ पे जैसे सुबुति प्रतीत हो रहे हैं.
An appearance of Maitreya Nagarjun.
या मैत्रीवीर नागार्जुन को आप देखते हैं.
An appearance of all of you.
या आप सब लोग प्रतीत हो रहे हैं.
But even in the time that I'm completing this sentence, I'm a different person.
लेकिन जैसे ही मैं इस वाक्य को ही समाप्त कर रहा हूँ, मैं दूसरा आदमी हूँ.
There's no permanent subhuti.
ऐसा कोई पक्का या नित्य सुबुति नहीं है.
There's just a flow of appearances.
वहां पे केवल एक प्रवाह है प्रतीत होने का.
Because we don't understand this, we go chasing things in the midst of appearances.
चूंकि हम इस बात को नहीं समझते जो प्रतीत हो रहा है उसके बीचों बीच उसके पीछे हम भागते
हैं. This is what the Buddha set out to resolve.
तो यही बुद्ध ने यानी क्या कह सकते हैं कि निर्माण किया उससे मुक्ति के लिए.
You remember in the Arya Paryasana Sutta, he says why he left home.
Arya Paryasana Sutta में बुद्ध बताते हैं कि क्यों उन्होंने गृह त्याग किया.
He said the thought came to him, I am conditioned.
उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं संस्कारित हूँ.
I was born.
मेरा जन्म हुआ है.
I will get sick.
मैं बीमार होगा या
I will grow old.
मैं वृद्ध होगा.
I will die.
और मैं मृत्यु या मैं मर जाऊंगा.
And yet I spend my life chasing after things that are born, grow old, get sick and die.
उसके बावजूद भी मैं उन चीजों के पीछे भाग रहा हूँ जो जन्म होती है, जो बीमार होती है, वृद्धिंगत होती है और मरती है.
That's normal life.
यह सामान्य जीवन है.
We take reality, this external world rather of appearances, as reality.
तो यह जो बाह्य रूप से प्रतीत होता हुआ विश्व या दुनिया या चित्र दिखता है उसे हम सत्य मान के चलते हैं.
And then we set our goals within it.
और फिर उसके बीचों बीच हम हमारा ध्येय निर्धारित करते हैं.
And of course we're permanently finding ourselves frustrated and disappointed.
और फिर हम बार बार अपने आप को निराश करते जाते हैं.
We get the conditions together for a while, then they fall apart.
तो कुछ वक्त के लिए वह परिस्थितियां इकट्ठा आती है फिर वो चली जाती है.
Because they must.
क्योंकि उसे जाना ही है.
That's the great value of things falling apart.
और यही अमूल्य यानी महत्व है चीजों के बिखरने का.
Because it teaches us this is just appearance, this is just conditioned arising.
वो बिखराव ही हमें बताता है कि वह प्रतीत हो रहा था, वह नित्य नहीं था.
So the Buddha said in the Aryaparyasana Sutta, why do I just chase after conditioned things when I'm conditioned myself?
तो आर्यपर्यसन सूत्र में बुद्ध ऐसा बताते कि मैं क्यों संस्कारितता के पीछे पड़ा हूं जब मैं स्वयं ही संस्कारित हूं.
Why don't I seek after what is unconditioned?
क्यों ना मैं उस चीज के खोज में लग जाऊं जो असंस्कारित है.
Why don't I seek after what is not born?
क्यों ना मैं उस चीज को खोजूं जो अमर है. अमर का मतलब जो जन्म रहित है.
Why don't I seek after what doesn't decay?
या मैं उस चीज को क्यों ना खोजू जो कभी नष्ट नहीं होती.
Why don't I seek after what does not die?
या मैं उस चीज को क्यों ना खोजू जो कभी मरती नहीं है.
And that impulse led him here.
और वह जो विचार या वह जो वृत्ति थी उस वृत्ति को उस वृत्ति ने बुद्ध को यहाँ लाया.
He came to the foot of the Bodhi tree in order to find what was beyond conditions.
तो इस बोधि वृक्ष के तले वो इसलिए आए कि जो संस्कारितता के जो परे है उसे खोजने के लिए.
And well, he found it.
और उन्होंने उसे खोजा.
Therefore, his quest, his Arya Paryasana, his noble quest, was fulfilled.
इसलिए उनकी जो खोज थी यह आर्य खोज थी, आर्य पर्यसना थी.
Done was what had to be done.
किया जा चुका है जो करना बाकी था.
So from that point he dwelt free from conditions.
और उस बिंदु के उपरांत वे परिस्थितियों से या संस्कारों से मुक्त हुए.
And from that point of view, he understood the nature of this world of conditions arising.
और उस दृष्टिकोण से फिर उन्होंने समझा कि परिस्थिति सापेक्षता क्या है या कैसे चीजें परिस्थिति जन्य है.
Maybe at this point he's trying to explain more fully to himself what has happened.
शायद इस वक्त वो अपने आप को ही बता रहे हो कि क्या उनके साथ हुआ या क्या चीज को उन्होंने खोजा.
That's what happens sometimes in meditation, isn't it? You have some sort of experience.
कभी कभी ऐसे होता है ध्यान में अपने को हमें ऐसे कुछ कुछ अनुभव आते हैं.
But the experience is beyond words.
लेकिन वो अनुभव हमारे शब्दों से परे होते हैं.
And then when you emerge from meditation or even in the meditation, you try to give words to what you've experienced.
तो जब आप ध्यान से बाहर आते हैं तो आप बताने की कोशिश करते हैं या शब्दों में उसे रखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है.
So maybe this is what's happening to the Buddha as he's walking up and down.
तो शायद यही बुद्ध के साथ हो रहा था जब वो चंक्रमण कर रहे थे.
Bhante said that in that period after his enlightenment he was trying to make sense of what he'd experienced.
तो Bhante ऐसा बताते कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसका क्या भाव है, क्या मतितार्थ है, उसे वो खोज रहे थे.
That is trying to make sense of it in our ordinary language.
जो सामान्य भाषा है उस भाषा में वो उसे बताने की कोशिश कर रहे थे.
And this is the sense he made of it.
और यह उसका भाव है जो उन्होंने बनाया या बताया.
Whatever arises, arises independence on conditions.
किसी भी चीज की उत्पत्ति परिस्थिति जन्य है, परिस्थिति अनुरूप है.
And of course, even the unconditioned arises through a process within the conditioned.
और जो असंस्कारितता है, वह जो संस्कारितता है, उस प्रक्रिया का भाग है, उस प्रक्रिया से वह गुजरती है.
You work with conditions to go beyond conditions.
आप उन परिस्थितियों के या उन संस्कारों के साथ काम करते हैं असंस्कारित होने के लिए.
That's what we're doing on this retreat.
यही हम कर रहे हैं इस शिविर में.
In the meditation, in everything we do, what we're doing at the temple, in our devotion, we're working with conditions to go beyond conditions.
तो जो कुछ भी हम करते हैं वो शिविर में यहाँ या पेड़ के तले बोधि वृक्ष के तले हम उन संस्कारों के साथ काम करते हैं ताकि उन संस्कारों का इस्तेमाल करके हम असंस्कारित हो सके.
And we're doing it so that we can experience what the Buddha experienced.
और हम इसलिए वह कर रहे हैं कि हम उसका अनुभव ले पाए जो स्वयं बुद्ध ने अनुभव लिया.
And our understanding of what we're doing comes from the Buddha's reflection on that Ratana Chankama.
और sorry, say that again.
The Buddha's our understanding of what to do comes from the Buddha's realization. On the Ratana Chankama.
हाँ, तो हमने जो करना चाहिए वह समझ आती है जो बुद्ध ने किया उस रत्न चंकमन से.
So that's a very important place for us.
तो यह काफी महत्वपूर्ण जगह हमारे लिए है.
If you like, it's the point at which the enlightened mind is beginning to turn towards the world.
अब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो तुरंत यानी ताजा दो संबोधि प्राप्त मन है वह दुनिया की ओर अभी रुख कर रहा है.
He's trying to make sense of the world.
वह दुनिया का जो भाव है उस भाव को समझने की कोशिश कर रहा है.
At this point, there's no suggestion that he was thinking about anybody else.
इस वक्त हमें ऐसा कोई सुझाव नहीं मिलता कि वो किसी के बारे में सोच रहे थे.
That comes later.
वो बाद में आता है.
But it's the first point at which the enlightened mind find some, as it were, expression.
तो यह पहली बार है जहाँ पे जो संबोधि प्राप्त मन है वह किसी अभिव्यक्ति की खोज कर रहा है या अभिव्यक्त होने की कोशिश कर रहा है.
The realization is beyond words.
क्योंकि जो साक्षात्कार है वह शब्दों से परे है.
But if we want to put it into words, we put it into these words.
अगर आप उन्हें किसी शब्दों में ही अगर रखना चाहते तो फिर यही शब्द हमें मिलते हैं.
Whatever arises, arises independence on conditions.
जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह परिस्थिति अनुरूप है, परिस्थिति के आधार पर उत्पन्न होता है.
So when we go to the temple tonight, let's reflect on that.
तो जब आज हम उस परिसर में जाएंगे तो इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे.
Just gaze at that spot as you pass.
उस जगह को देखिए जब आप वहां से जब गुजरते हैं.
And reflect on what was going on here.
और चिंतन कीजिए जो कुछ भी उस जगह पर हुआ.
The point at which the enlightened mind engages with the world of appearance.
ऐसा बिंदु जहां पे संबोधि प्राप्ति मन दुनिया के साथ व्यस्त होने की कोशिश कर रहा है.
Later Theravada tradition says that this is where the Buddha basically devised the Abhidhamma.
बाद में थेरवादी परंपरा हमें ऐसे बताते हैं कि यहां पे बुद्ध ने
Device means form. Made. Yeah.
जहाँ पे अभिधम्म की उन्होंने निर्मित की.
I don't think that's what it was at all.
मुझे ऐसे नहीं लगता कि वह सत्य है.
At this point, it's something much more basic, much more in to do with principles.
यहाँ बहुत ही जो चीजें थी वह तत्व अनुरूप थी, तत्व जन्य थी.
And you can just imagine the Buddha walking up and down, just glowing.
और आप कल्पना कर सकते हैं कि बुद्ध वहां आगे पीछे चल रहे हैं और मान लीजिए वह प्रकाशित हो रहे हैं, चमक रहे
हैं. डीप डीप सीरियसनेस
और एक गहरी गंभीरता उनके मन में होगी.
बट एट द सेम टाइम एन ओवरवेलमिंग जॉय.
लेकिन ऐसा अनगणित आनंद
एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग
और एक गहरा भाव समझ का.
सो ट्राई टू सी द बुद्ध देयर.
तो आप वहां बुद्ध को देखने की कोशिश कीजिए.
As I'm talking to you, I can imagine him walking up and down very easily.
जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कल्पना कर सकता हूं कैसे बुद्ध वहां रहे होंगे.
Well, in a way, he's still walking up and down there.
एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुद्ध आज भी वहां चल रहे हैं.
Imaginatively, he's still walking up and down there.
काल्पनिक तरीके से आज भी बुद्ध वहां चल रहे हैं.
And so many millions of Buddhists over 2,500 years have come and been aware of him.
तो हजारों सालों में ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग वहां आए होंगे और उनके बारे में सजग रहे होंगे.
So try to be aware of the significance of this spot.
तो उस जगह के महत्व को पहचानने की कोशिश कीजिए.
And try to open up to it.
और उसके प्रति आप अपने आप को खुला कीजिए.
See what you feel.
और देखिए आपको कैसे लगता है.
Sometimes one can feel some sort of imaginative vibration.
कभी कभी ऐसे काल्पनिक कंपन हमें महसूस हो सकते हैं.
So many people have expressed so much devotion there.
क्योंकि कई लोगों ने अपनी जो भक्ति है उस भक्ति को वहां बरसाया है.
Huge mounds of flowers have been offered there.
यानी ऐसा कह सकते हैं फूलों का पर्वत ही वहां अर्पण हो चुका होगा.
So much incense smoke has burned there.
कई सारी अगरबत्तियां वहां चढ़ चुकी होगी.
And so many hearts have felt deep faith there.
और कई हृदयों ने वहां ऐसी गहरी भक्ति जाहिर की होगी.
And in some ways that is all still there.
और एक दृष्टिकोण से वह सारी बातें अब भी वहां है.
इफ यू कैन ट्यून इन टू इट, इट्स स्टिल देयर दैट फीलिंग.
अगर आप उसके साथ आ, 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 अपना यानी संवाद प्रस्थापित करते हैं तो आप उसे कर सकते हैं.
सो व्हेन वी गो डाउन टुनाइट, एटलीस्ट ट्राई टू फील व्हाट्स हैपनिंग देयर.
तो अगर आज की शाम जब हम वहां जाएंगे तो कम से कम इसे हम महसूस या इस भाव को महसूस करने की कोशिश करेंगे.